नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा ओरेंज से आपका दोस्त योगेश। त्योहारों पर महंगाई की मार, ऐसे में कैसे मनाएं दीपावली पर्व? जिस तरीके से कोरोना काल से निरंतर महंगाई बढ़ते ही जा रही है, आम गरीब परेशान होते जा रहा है। पेट्रोल के दाम देखो या रसोई गैस के दाम देखो, निरंतर बढ़ने से गरीबों के थाली का अनाज निरंतर कम होते जा रहा है। और इन्हीं विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जनपद सदस्य संदीप जी भकने जुड़े हुए, साथ ही गांधीवादी एवं लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनुप सर जुड़े हुए। सर, आप दोनों का स्वागत सर मोबाइल अड्डे पे।
धन्यवाद,
नमस्कार। नमस्कार योगेश भाई।
सर, जिस तरीके से अभी दीपावली का पर्व चल रहा है और निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है, और क्या खाने का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो और अन्य जितने भी खाद्य वस्तुएं हैं, निरंतर बढ़ती जा रही है, सरकार के नियंत्रण में है या नहीं है, और सरकार इसको निरंतर क्यों बढ़ा दे रही, इस पे नियंत्रण क्यों नहीं है? अनुप सर,
सबसे पहले तो मैं संदीप सर को नमस्कार बोलता हूँ।
नमस्कार सर।
और दिवाली की हार्दिक शुभकामना भी आपको,
आप दोनों को भी दिवाली की हार्दिक।
और योगेश भाई आपको भी, क्योंकि आप बहुत ही उचित समय पर उचित सवाल कर रहे हैं। देखिए, आपका जो सवाल है कि सरकार के नियंत्रण में महंगाई है कि नहीं है, निश्चित तौर पे इसे महंगाई अब नहीं कहना चाहिए। आवाज आ रही योगेश भाई?
जी जी,
यह महंगाई नहीं रह गई है, अब इसे लूट कहना चाहिए। क्योंकि महंगाई कह करके हम वैश्विक शक्तियों को बचा देते हैं, और वह हम अपने छोटे छोटे दुकानदारों या छोटे छोटे उद्योगपतियों या कारखानों वालों पे डाल देते हैं। वास्तव में यह महंगाई नहीं रह गई है, यह लूट हो गया है। आज पूरे दुनिया के अंदर जो वैश्विक ताकतें काम कर रही है लूटने के लिए, वो किसी भी तरीके से चाह रही है कि दुनिया को गिरफ्त में लिया जाए। और इनका सरगना है यूएनओ, और यूएनओ के माध्यम से जो डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन और आईएमएफ इंटरनेशनल मुद्रा फंड का जो संचालन हो रहा है, ये दोनों है, इनके माध्यम से वो पूरे दुनिया के देशों में दिवालियापन लाना चाहते हैं। और दिवालियापन लाने के साथ साथ तो दुनिया को एक खराब आर्थिक व्यवस्था देना चाहते हैं। और जिन देशों की आर्थिक व्यवस्था मजबूत है, उन देशों की आर्थिक व्यवस्था को ये पहले खोखला करना चाहते हैं। तो आज जो आप देखिए, जो सरकार की आप सवाल कर रहे हैं, हम तो सरकार शब्द का प्रयोग भी नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजादी के बाद से हमने भारत के अंदर सरकारें बदली है, बाकी कुछ नहीं बदले है। तो जो सरकार है, यह सरकार किसकी है? पहले तो इससे सवाल होना चाहिए था कि सरकार क्या आम आदमी की है? तो आज की सरकार नहीं, केवल वर्तमान की सरकार नहीं, इसके पीछे की भी सरकार देख लिया जाए या 1991 के बाद के भारत के सरकारों का दर्शन देखा जाए, तो ये आम आदमी की सरकारें नहीं रही है, या कहीं ना कहीं कारपोरेट घराना पैसों वाले पूंजीपतियों की सरकार रही है, और बाजार वही नियंत्रित कर रहे हैं। क्योंकि बाजार के माध्यम से जितना पैसा पूंजीपतियों के पास जाता है, उससे ज्यादा पैसा या एक उसके मात्रा में पैसा वो चुनाव में किसको देते हैं? ये राजनीतिक दलों को देते हैं, नेताओं को देते हैं। आज चुनाव जो महंगा हुआ है, उसका यह भी एक कारण है कि पूंजीपति जो है इनको पैसे देते हैं, और ये लोग उसके बल पे चुनाव लड़ते हैं। तो आज तो जो चुनाव का संचालन हो रहा है, या सरकार बन रही है या सरकार गिर रही है, वो आम जनता नहीं तय कर रही, यह तय कर रही कौन? कारपोरेट घराना। तो यह जो सरकार है, यह पूरी तरीके से कारपोरेट घराने की गिरफ्त में है। तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो जो महंगाई है उस पर सरकार कोई नियंत्रण नहीं कर रही, और सरकार उस पर रास्ता भी नहीं बता रही, क्योंकि सरकार पहले ही एक दूसरे के चंगुल में फंसी हुई है। तो इस महंगाई को रोकने के लिए सरकार को विल पावर की जरूरत है, और विल पावर कब आएगा? जब सरकार अपने आप में सत्यनिष्ठ होगी, और जब वो पूंजीपतियों को कहेगी कि नहीं, हमें आपके चंदा की जरूरत नहीं है, हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है, हमें तो आम जनता की हिफाजत की जरूरत है, आम जनता के लिए हमें काम करना है। तो जब तक इनके घोषणा पत्रों को रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है, या जब तक ये जनता के बीच में जो वादा कर रहे उन पे काम नहीं किया जाएगा, और जनता जब तक स्वतः जागरूक नहीं होगी, तो हमारा तो यह मानना है योगेश भाई कि सरकार के बस में यह महंगाई नहीं रह गई है, और सरकार खुद ही एक कारपोरेट घराने के माध्यम से संचालित हो रही है। हम लोगों के नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो 1960 के दशक में कहे थे कि बाजारू लूट को अगर समाप्त करना है तो आपको दाम बाधो नीति को अपनाना होगा। लेकिन 1960 के बाद की जो भी सरकारें आई, उन्होंने इस नियम को लागू नहीं किया, दाम बाधो नीति को लागू नहीं किया। दाम बाधो नीति को अगर लागू किए होते तो बाजार नियंत्रित होती, परंतु बाजार आज नियंत्रित नहीं है, बाजार अनियंत्रित है। नियंत्रित कौन है? छोटे छोटे उत्पादक कृषक वर्ग जो है नियंत्रित है, छोटे छोटे जो व्यवसायी है वो नियंत्रित है, उन पर नियंत्रण किया जा रहा है, जबकि कारपोरेट घरानों को लूटने की छूट दी जा रही है। तो हमारा तो यह मानना है कि सरकार को इन गिरफ्त से बाहर निकलना चाहिए, और सरकार जब इन गिरफ्त से बाहर नहीं निकलेगी तब तक महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
सर जिस तरीके से महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है और गरीबों को खासी चिंताएं भी सता रही है, जो दाल शायद भारत के दिल्ली में शायद 100 रुपए होगी, वो एक ग्रामीण क्षेत्र में आते आते उसके दाम औने पौने दाम हो जाते हैं, और इसी के कारण ग्रामीण क्षेत्र में गरीब व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। सर संदीप जी, सर इसको इसको किस तरह देखते हैं?
मेरे पूर्व वक्ता ने जिस तरह से कहा कि महंगाई नहीं होगी, ये लूट है। मोदी सरकार जब 2014 के पूर्व कांग्रेस की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, जिस तरह से भाषण दिए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जब से 2014 के बाद से देश में भाजपा की सरकार आई है, भाजपा की सरकार ने जो एक काम किया है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को उद्योगपतियों के हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में दे दी है, और यदि पूंजीपतियों के हाथ में सरकार होगी और सरकार केवल कठपुतली जैसा रोल करेगी और उद्योगपति उनको कठपुतली जैसा नचाएंगे, तो निश्चित रूप से देश में लूट बढ़ेगी, क्योंकि ये देश गरीबों का, किसानों का देश है, ये उद्योगपति और पूंजीपतियों का देश नहीं है। यहाँ विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, गरीब रहते हैं, और विभिन्न योजनाएं उनको मद्देनजर रखते हुए सरकार को उनके लिए योजना बनानी होती है कल्याण के लिए। पर मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा गया कि सारी जो योजना है, सारा जो लाभ है, वो उद्योगपतियों को मद्देनजर रखते हुए और उद्योगपतियों के हितों की के लिए काम किया जा रहा है, और सरकार केवल उनके इशारों पे चल के पूरी सरकार चला रहे हैं। आज गरीब तो बहुत परेशान है ही, किसान भी बहुत परेशान है, खासकर मध्यम वर्गीय लोग, और वो भी निम्न मध्यम वर्गीय लोग, उनका तो जीवन दुभर हो गया है। वो तो ना गरीब है ना अमीर है, और जिस तरह से मध्यम वर्गीय लोगों के बस के बाहर हो चुकी है पूरी महंगाई, चाहे रसोई गैस हो, चाहे दाल हो, चाहे खाने का तेल हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, सारी चीजें ऐसी महंगी हो गई है कि वो तो ना अपने बच्चों को दिवाली में कपड़े ले पा रहे हैं, ना कोई मिठाई खरीद पा रहे हैं, ना अपने घर में कोई ऐसे फटाके ले पा रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, तो इस सरकार में जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं, उन लोगों ने सोचना चाहिए कि देश की हालत क्या है और ये देश किस तरफ जा रहा है। सारी महंगाई आप लोगों के और हम लोगों के सामने है, पेट्रोल 125-150 रुपए लीटर हो गया,
सर क्या
200 रुपए लीटर तेल, 200 रुपए लीटर हो गया है, तो किस तरह से आदमी, इस देश का आदमी और इस देश का किसान और गरीब कैसे दिवाली मनाएगा?
सर क्या ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसकी 40% हिस्सेदारी जीडीपी में होती है, और कई सरकारें शायद इन्हीं लोगों को देखकर कई योजनाएं तैयार करती हैं और इनके इन तक पहुंचे इसके लिए प्रयास करती है। अनुप सर यही सवाल है कि क्या सर ग्रामीण क्षेत्र की 40% जीडीपी का जीडीपी में हिस्सा होता है, उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी तक के इन सुविधाओं को अब तक क्यों नहीं वहन कर पाए, उन्हें क्यों नहीं मिल पाए?
देखिए योगेश भाई, आप एक किताब है गांधी का हिंद स्वराज, गांधी जी को उसको वीर पुस्तक बोला जाता है। मैं एक फिर पुनः एक बार आपको कह दूं योगेश भाई कि मैं सरकार शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि सरकारें हमने बहुत बदली है और कोई भी सरकारें आई तो हिंदुस्तान की आम जनता के लिए काम नहीं की है। अगर आप गांधी के हिंद स्वराज को पढ़ लीजिए तो गांधी जी उसमें लिख रहे हैं कि भारत की जो आत्मा है वो गांवों में बसती है। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रयोग किया जा रहा है किसी भी सरकार के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ एक वोट लेने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। पहले आप देखिए, जो गांव होते थे वो सुदृढ़ गांव होते थे, आत्मस्वावलंबी गांव होते थे, गांव में हर व्यवस्था होती थी, गांव के लोग अपनी जीविका से लेकर के इलाज से लेकर के अपने पहनावा तक के सारे संसाधन अपने गांव में उपलब्ध कर लेते थे। लेकिन इसको तबाह करने का प्रयत्न किसने किया? हमने शुरू में ही बोला कि IMF और WTO जो एक ऐसी संस्था है जो चाहती है कि किसी भी देश का, केवल भारत का ही नहीं, किसी भी देश की अस्थायी इकोनॉमिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। तो उसने जब देखा कि भारत गांवों का देश है और भारत के गांव जो सुदृढ़ अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसने गांवों से रोजगार को खत्म करने का प्रयत्न किया, और रोजगार को खत्म करने का जो प्रयत्न किया उसमें एनजीओ की भी बहुत बड़ी भूमिका है। वो एनजीओ जो आई गांव गांव में, उन्होंने किसी ना किसी प्रलोभन में गांव को तोड़ने का काम किया, गांव को बनाने का काम नहीं किया। 100% एनजीओ ने नहीं, कुछ एनजीओ ने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन वो सरकार के माध्यम से आई। और वो फंड कहाँ से आया, उस फंड की भी जांच होनी चाहिए कि एनजीओ के पास फंड कहाँ से आए। तो जितने विदेशी पूंजी लगे गांवों में काम करने के लिए, वह तो एक प्रकार से गांव को नुकसान करने के तरफ लेकर गए और गांव की आर्थिक व्यवस्था को उन्होंने खराब किए। आज जो प्रयोग चल रहा है वह गांव को बसाने का प्रयोग नहीं चल रहा है, पहले तो हम यही से फेल हो जा रहे हैं कि हम गांव को सुदृढ़ नहीं बना रहे। अगर हम गांव को सुदृढ़ नहीं बनाएंगे तो गांव में अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, और गांव की जब अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसकी इकोनॉमिक व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ की 40% आबादी, और आप पढ़े होंगे हिंदुस्तान के अंदर एक कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष थे अर्जुन सिंह गुप्ता, उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा था कि हिंदुस्तान के 80% लोग आज भी सिर्फ 20 रुपया क्रय करने की, यानी खरीदारी करने की क्षमता रखते हैं, प्रतिदिन खर्चा करने की क्षमता रखते हैं। अब बताइए 80% लोग सिर्फ 20 रुपया प्रतिदिन खर्चा करना चाहते हैं, और इसी देश के अंदर एक एक उद्योगपति, अभी कोरोना काल में देख लीजिए अंबानी ने 1 मिनट में 90 करोड़ रुपया कमाए। तो आज अंबानी ठीक है इस सरकार के है, लेकिन पिछले दौर में जाकर के देखा जाए तो यही अंबानी तो दूसरे सरकार के थे। तो सारी सरकारें जो भी बन रही है देश के अंदर, जिस पार्टी की भी सरकार बन रही है, वो कहीं ना कहीं इनकी सरकारें बन रही, और वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो गांव आत्मा है उस आत्मा से सारे संसाधन को समाप्त कर दिया जाए, ताकि लोग मजदूरी करने के लिए भुखमरी के तरफ बढ़ जाए, और जब भुखमरी के तरफ बढ़ जाएंगे तो एक नई प्रकार की दास्ता का निर्माण हो जाएगा। इस दास्ता को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम गांव की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे, तो जीडीपी वगैरह से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप देख लीजिए जीएसटी लाया गया, आज तक जीएसटी का कुछ मतलब समझ में नहीं आया, जीएसटी पे सरकार फेल्योर हो गई। तो अब योगेश भाई हमें सरकार पे बात नहीं करना चाहिए, अब हमें व्यवस्था पे बात करना चाहिए कि व्यवस्था कैसे बदलेगी, और जब तक हम व्यवस्था नहीं बदलेंगे, जब तक हमारी व्यवस्था संवैधानिक नहीं होगी, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी भी राज्य में हो, जब तक व्यवस्था हमारी संवैधानिक नहीं होगी, तब तक आम जनता के भलाई के लिए काम नहीं किया जा सकता है, आम जनता के जीवन में खुशहाली नहीं लाई जा सकती है।
सर, उचित मूल्य की दुकान हो, राशन वितरण हो, ग्रामीण क्षेत्र में कई लोगों को कई उचित मूल्य की दुकानों पर राशन मिलता है, पर क्या इस महंगाई से खाने का तेल हो, दालें हो, या परिवहन के कारण डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण इनके दाम बढ़ने की व्यवस्था हो, इनके कारण गरीबों के थाली में जो खाना जाता है वो और भी महंगा होते जाता है, और उनके बच्चों को जो पोषण की जो व्यवस्था है वो नहीं मिल पाती है, इसके कारण भारत में हर 5 में से 1 बच्चा कुपोषित है। सर, तो क्या ऐसी कोई नई व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि ये जो भारत में जो कुपोषित की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, इस पर नियंत्रण किया जा सके? संदीप जी,
देखिए, जो गांव में जो राशन मिलता है वो बहुत ही निम्न स्तर का होता है। हम लोगों ने सार्वजनिक वितरण केंद्रों में देखते हैं कि जो सड़ा गेहूं होता है, सड़ा चावल होता है, उसकी न तो कोई क्वालिटी होती है, ऐसा यदि भोजन हम जो जानवरों को खिलाने लायक भी भोजन नहीं है, ऐसा भोजन हम यदि अपने बच्चों को खिलाएंगे, ग्रामीणों को खिलाएंगे, तो वो कुपोषित ही रहेंगे, स्वस्थ तो बनेंगे नहीं। इसलिए सरकारों को इस ओर इनका कैसा स्तर बढ़े, कैसे क्वालिटी का, और ग्रामीणों की व्यवस्था के हिसाब से इनको क्या लाभ मिले, ये सरकार और शासन के सोचने के, और अधिकारी और जो सरकार में सत्ता में बैठे हुए नेता है उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। मेरे भाई साहब ने जिस तरह से कहा कि जो ये ग्रामीण में जो व्यवस्था है, जिन एनजीओ के माध्यम से, जो विदेशी फंड के माध्यम से हमारी व्यवस्था को जो तोड़ने का काम किया, ये निश्चित रूप से बहुत सही सटीक बात है कि विदेशियों की प्लानिंग है कि गांव का आदमी गरीब रहे, उसकी अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाए, ताकि वो हमारी गुलामगिरी करने को तैयार रहे। आज गांव के और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, गांव पूरे गांव को स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है, कृषि आधारित ऐसे उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीणों को और छोटे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको वहां से उसी से रोजगार मिले और वो खुद स्वावलंबी बने। आज उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, हम लोग उनकी क्रय शक्ति तो नहीं बढ़ा रहे, ऊपर से उन महंगाई बढ़ा रहे, ना तो उनके पास पैसे है, ना कोई चीज खरीदने के लिए उनकी व्यवस्था है। तो महंगाई में एक तो गरीब व्यक्ति मर रहा है और उद्योगपतियों का भला हो रहा है। तो ये सारी जो व्यवस्था जो है वो गांव और गरीब को दबाने की व्यवस्था है। और जो कुपोषण की बात आपने की है, कुपोषण की ओर केवल नारेबाजी, केवल ढकोसला और कागजी कार्रवाई के अलावा जमीनी स्तर पे जमीनी हकीकत जो है वो कुपोषण को लेके केवल केवल नारेबाजी, केवल दिखावे के अलावा सरकार कुछ नहीं कर रही है।
सर, क्या कोविड पैंडेमिक के काल में करीब 12.5 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई है, और साथ ही कोरोना काल में कई लोग बेरोजगार भी हुए, क्या सर सरकार इस महामारी के आरंभ में लेकर महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, क्या इसका कारण कोरोना ही बता रही है, क्या यह कहां तक सही है सर अनुसार?
नहीं, इसका कारण कोरोना बिल्कुल नहीं है योगेश सर, यह तो सरकार अपनी नाकामी को छिपा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि व्यवस्था की कमी है, कोरोना इसका उत्तरदायी नहीं है। कारण है कि कोरोना कब आया, कोरोना तो अभी आया ना, 2 साल हो गए, लेकिन कोरोना में ही आपके देश का एक उद्योगपति कौन सा धंधा करता है कि 1 मिनट में 90 करोड़ रुपया कमा लेता है और आप 12 करोड़ लोगों को बेरोजगारी के कगार पे ला करके खड़ा कर देते। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है भारत को और दुनिया को मशीन के युग के तरफ ले जा रही है, रोबोट संस्कृति में ले जा रही है। और जो रोबोट संस्कृति में जाएगा तो योगेश भाई वास्तविक रूप से देखा जाए तो रोजगार कम होंगे, क्योंकि जहाँ पे पहले 10 मजदूर काम करते थे, 10 व्यक्ति काम करते थे किसी भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आज एक कंप्यूटर काम कर रहा है, एक जेसीबी काम कर रही है, एक बड़े बड़े हार्वेस्टर काम करने लगे। तो सरकार तो चाह रही है कि मशीनीकरण कर दिया जाए और मशीनीकरण कर करके लोगों में बेरोजगारी को भयावह स्थिति बना दिया जाए बेरोजगारी। अगर सरकार की मानसिकता लोगों को व्यवस्था देने की होती, रोजगार देने की होती, तो इतने मशीन पे वो डिपेंड नहीं होती, मशीन पे निर्भर नहीं होती। और मशीन बड़ी मशीन की ठीक है भारत में जरूरत है, लेकिन गांधी जी कहा करते थे कि तुम बड़े उद्योग वही लाओ जिसकी अपने देश में जरूरत है। हमारा देश 56 व्यंजनों का देश है, हम 56 प्रकार के भोग बना सकते हैं, व्यंजन बना सकते हैं। हमारे यहाँ इतनी क्षमता है कि हम अपने कपास से अपना काटन बना सकते हैं, उससे अपने सूत बना सकते हैं, उससे अपने कपड़े बना सकते हैं। अगर एक काटन का मशीन लगा दिया जाए, उससे सूत बनने लगे, उससे कपड़े बनने लगे, तो आप एक श्रेणी देखिए ना कितने लोगों को काम मिलने लगे। तो गांधी जी तो आप भारत के संविधान को पढ़िए, नीति निर्देशक तत्व को, तो उसमें लिखा है कि रोजगार देने का भी व्यवस्था करना चाहिए लोगों को, लेकिन उसको सिर्फ लिखा गया, उसको कानूनी नहीं बनाया गया। तो आज तो जरूरत है कि जो बातें संविधान के डीपीएसपी में लिखा गया नीति निर्देशक में, उसको आप कानूनी बनाइए। दूसरी जो बात है कि आज भी अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना आप चाहती है, व्यवस्था किसी की भी सरकार हो अगर वो चाहती है कि आत्मनिर्भर बने, तो योगेश भाई उसके लिए हमें छोटे छोटे उद्योगों का स्थापना करना होगा, छोटे छोटे लघु उद्योग करना होगा, जिसको राम मनोहर लोहिया छोटे उद्योग या छोटे मशीन के उद्योग कहा करते थे। गांधी जी ने तो कहे थे कि बड़े उद्योगों की जरूरत नहीं है, ये आएंगे तो उससे बेरोजगारी भयावह बढ़ेगी, उससे रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होंगे। तो सरकार ने कोरोना काल में कुछ भी नहीं किया, और कोरोना के पहले भी अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मशीन पर यह डिपेंड हो गए, इन्होंने उसके लिए कोई काम नहीं किया रोजगार देने के लिए। अगर सरकार मानसिक स्तर पर तैयार रहती कि हमें रोजगार देना है, तो पहले से उद्योग धंधे का निर्माण की होती। कोरोना आया तो क्या उद्योग धंधे को तो लेकर के नहीं गया, ठीक है कोरोना 1 साल रहा, लेकिन अब तो देश पटरी पे आने लगा ना धीरे धीरे। तो आप एक तरफ कह रहे कि कोरोना आने से रोजगार घट गए, और दूसरी तरफ हम महंगाई कैसे बढ़ा दिए भैया, महंगाई पे क्यों नहीं नियंत्रित कर रहे। तो महंगाई पे आप नियंत्रित नहीं कर रहे, रोजगार घटा रहे, तो कहीं ना कहीं यह जो वैश्विक शक्तियां है योगेश भाई, और अभी तक आप देख रहे थे कि निजीकरण का दौर चल रहा था, और कोरोना काल में संदीप भाई सुन रहे होंगे, मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में जो सरकार है भारत की, उसने एक प्रयोग किया WTO और विश्व बैंक और UNO के हाथ में आकर के, उसको न्यू नॉर्मल का उन्होंने नाम दिए। न्यू नॉर्मल का मतलब होता है अहस्तक्षेप की नीतियां, यानी पहले जो राज्य थोड़ा बहुत दूसरे के कार्यों में दखल देती थी या राज्य का इंटरफेयर होता था कि नहीं आपको ये काम करना चाहिए, अब वो पूरी तरीके से काम बंद कर दिया जाएगा। न्यू नॉर्मल का मतलब है अहस्तक्षेप, यानी प्राइवेट जो निजीकरण की शक्तियां है, जो निजी ताकतें है, वो कुछ भी करे, उसमें राज्य कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो अगर राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा तो रोजगार कहां से पैदा होगा। तो यह तो न्यू नॉर्मल को कोरोना के माध्यम से थोपने का प्रयत्न है। और आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया, यह एक प्रयोग है, और इस प्रयोग के ही माध्यम से आप देखिए CM राइज को लाया गया, यह एक प्रयोग है। जिस दिन यह थोड़ा सा भी सफल हुआ योगेश भाई, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि नाना प्रकार से तमाम जो सरकारी स्कूल है उसको बंद कर दिए जाएंगे, और जिस दिन स्कूल बंद होंगे उस दिन शिक्षक भी बाहर हो जाएंगे और फीस भी बहुत महंगी हो जाएगी। तो यह ऑनलाइन जो है एक न्यू नॉर्मल व्यवस्था के तरह प्रयोग किया जा रहा है, और थोड़ा बहुत इसकी सफलता दिखने लगेगी तो बहुत बड़े मात्रा में स्कूल बंद होंगे और शिक्षक घटेंगे। तो सरकार तो एक तरीके से निजीकरण को बढ़ावा देकर के रोजगार को घटाने का प्रयत्न कर रही है, और यह केवल अपने हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में यह व्यवस्था चल रही है, क्योंकि WTO पर जो अपनी 1995 में हिंदुस्तान की सरकार ने हस्ताक्षर की, वो हस्ताक्षर हिंदुस्तान की सरकार को बाध्य करके रखा है। तो आज की सरकार या आज की व्यवस्था को चाहिए कि उस WTO से बाहर निकले, उसको नकारे। जब तक उसको नकारा नहीं जा सकता है तब तक कोरोना जैसी कई बीमारियां आएंगी और जाएंगी, और उनके ऊपर ब्लेम लगाया जाएगा, लेकिन उसका समस्या का समाधान उसको नहीं किया।
सर, क्या कोरोना काल में प्रवासी श्रमिक हो, कई कामगार हो, यह अपने कार्य नहीं कर पाए, इससे कारण कार्य बंद रहा, और अभी जो नरेगा योजना थी उनका बजट बढ़ाना चाहिए था ताकि गरीब को ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। साथ ही मुझे ये बताइए सर, 2014 में जो गैस सिलेंडर 410 रुपए का था वो आज 950 के करीब पहुंच चुका है। क्या खाने का तेल सर 110 रुपए था, वह आज 200 रुपए पहुंच चुका है। और साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। संदीप जी, इसको नियंत्रित करने के लिए और क्या प्रयास किए जाने चाहिए? साथ ही दीपावली का पर्व निरंतर चल रहा है, खाने का तेल भी निरंतर बढ़ता जाए, और संक्षेप में सर बताइए इस समय की कमी है।
सरकारें इस पे नियंत्रण कर सकती है
जी।
प्रदेश की सरकार उसमें टैक्स कम करके नियंत्रण कर सकती है। जो संग्रहण की जो उद्योगपतियों की जो एक प्लानिंग होती है उस पर कार्रवाई करके और जमाखोरी पे अंकुश लगा के सरकार इसको निश्चित रूप से कंट्रोल कर सकती है। सरकार के रूप में, सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। क्यों, इसके पूर्व भी सरकारें थी, इसके पहले भी व्यवस्थाएं थी और सब कुछ बराबर चलता था। सरकार यदि चाहे तो सब कुछ नियंत्रण में अपने कर सकती है।
तो ये थे डॉक्टर अनूप सर और संदीप जी भकने, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर त्योहारों पर महंगाई की मार, अब कैसे मनाए गरीब दीपावली का त्योहार, इसी विषय पर इन दोनों लोगों ने मोबाइल वाणी पर जानकारी साझा की। अनूप सर, संदीप जी, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपका धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
आप सभी को दीपावली
सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
जी जी, नमस्कार योगेश भाई। संदीप भाई नमस्कार।
छिंदवाड़ा वाले आपका दोस्त योगेश।